राजवीर आगे बोला था, भले ही मेरी बीवी की जान किसी ने नहीं ली थी, बल्कि उसने खुद सुसाइड किया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे जिंदा रखा, अपने पास रखा और हमेशा उसका ध्यान रखा। लेकिन अरमान सिंघानिया को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, उसे मेरी बीवी की लाश को अग्नि नहीं दिलवानी चाहिए थी। बताओ अविनाश सूर्यवंशी, कैसा लग रहा है अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की मौत को देखना? तुम जानते हो अपनी बीवी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, और अब जब मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, अपनी नई बीवी बनाने जा रहा था, उसे भी अरमान सिंघानिया मुझसे छीन कर ले क्या, तो भला मैं उसे ऐसे कैसे जाने देता? इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैंने पहले ही सब कुछ इस तरह से प्लान किया था ताकि अरमान सिंघानिया खुद ब खुद अपनी बीवी की जान ले ले। और जानते हो, मुझे पूरा यकीन था कि यहां ये सारे लड़के आएंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि साथ में ये बुढ़िया और लड़कियां भी आ जाएंगी। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहां से जाने दूंगा? अब जो भी यहां आया है वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और वैसे भी किसी को आस्था की मौत का शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में तुम सब भी उसके पास पहुंच जाओगे। ये कहते हुए राजवीर बेहद खतरनाक लग रहा था। उसी वक्त सम्राट ने इधर उधर देखते हुए कहा, संजना कहाँ है? जैसे ही सम्राट ने उसका नाम लिया, संजना, जो अब तक उस सेफ बॉक्स में छुपी हुई थी, तुरंत बाहर निकल आई। अब क्योंकि आस्था मर चुकी थी और वो अपनी खुशी खुलकर मनाना चाहती थी, वो बाहर आते ही अपनी हथेलियां आपस में बजाने लगी और जोर जोर से ताली बजाते हुए बोली, फाइनली आस्था सिंघानिया की मौत हो गई, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। संजना पूरी तरह से अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी। वहीं राजवीर ने संजना को देखा और बोला, तुम जानती हो जो ड्रग्स मैंने तुम्हें दिया था उसे तुमने अरमान को देकर बिल्कुल सही किया। अगर तुम वो ड्रग्स अरमान को नहीं देती तो आज जो कुछ भी हुआ है वो कभी नहीं हो पाता। तुम सच में तारीफ के काबिल हो, और पहली बार राजवीर जिंदल तुम्हें इनाम देगा। जैसे ही संजना ने यह सुना वो पूरी तरह से हैरान रह गई। वो बोली, मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं, और अगर मैं वो ड्रग्स अरमान को नहीं देती तो फिर क्या होता? तभी राजवीर बोला, उसके बाद अरमान की यादें वापस आ जाती और वो आस्था की जान लेने के बजाय हम सब की जान ले लेता। जैसे ही राजवीर ने यह कहा, संजना के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। वहीं राजवीर उसके चेहरे के भाव समझ नहीं पाया। तभी सुमित गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोला, आखिरकार क्या मिला तुझे आस्था की जान लेकर? क्या चाहता है तू? ऐसा कैसे कर सकता है? क्या तुझमें जरा सा भी रहम नहीं है? बोल, जवाब दे। उधर अबीर और टाइगर ने सम्राट को गन पॉइंट पर ले रखा था। तभी सम्राट अचानक जोर से हंसते हुए बोला, गुरुजी एक बात तो बताइए, अरमान सिंघानिया ने तो आपकी बात मानकर अपनी बीवी की जान ले ली, तो क्या वो सबसे बड़ा मूर्ख हुआ या फिर सबसे सर्वश्रेष्ठ? वो आगे बोला, बताइए, जो उसकी बीवी को अगवा करता है वो सर्वश्रेष्ठ है या जो उसकी जान ले लेता है वो सर्वश्रेष्ठ है? कहीं ना कहीं सम्राट के कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए कि राजवीर उसे सर्वश्रेष्ठ कहे। लेकिन राजवीर ने तुरंत अरमान की ओर देखते हुए कहा, अभी अरमान को पूरी तरह देखना बाकी है, उसके बाद ही बताऊंगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है और कौन नहीं। ये सुनकर सम्राट चौंक गया। वहीं संजना ऐसा लग रहा था मानो पत्थर की बन गई हो। वो चुपचाप खड़ी थी। उसे लग रहा था अगर वो बोलेगी तो भी मारी जाएगी और अगर चुप रहेगी तो भी। इसीलिए वो बस खामोश खड़ी रही, शायद कुछ वक्त और मिल जाए। उधर नानी माँ गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, दूर हो जाओ मेरी बेटी से, तुम लोग उसके पास आने लायक भी नहीं हो। तुमने मेरी बेटी की जान ले ली, बेरहमी से मार डाला, और अब यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? ये कहते हुए वो लगातार आस्था को अरमान से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। अरमान ने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया। तभी अबीर आगे बढ़ा, उसने अपनी बंदूक निकाली, अरमान की ओर तान दी और ठंडी आवाज में बोला, अगर आस्था इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो तुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। अरमान सिंघानिया, आज मैं तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। आंसू रोकने के चक्कर में अबीर की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थीं, लेकिन तभी अचानक राजवीर नहीं नहीं कहते हुए वो तुरंत ही अरमान के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। रवि की आंखों में देखते हुए तिरछी नजर करके बोला था, नहीं मिस्टर राठौर, नहीं।
अरमान सिंघानिया की जान इतनी आसानी से नहीं जाएगी। अभी मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। अभी मैं उसे उसकी बीवी के लिए रोते हुए देखना चाहता हूँ और इतना मजबूर देखना चाहता हूँ कि वो खुद अपनी बीवी की मौत के लिए खुद को सजा दे, खुद की जान ले ले। और जब तक मैं ये दृश्य नहीं देख लेता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। राजवीर एकदम भयानक सी हंसी हंसने लगा और फिर अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। उसका पागलपन हर हद को पार करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। तभी सम्राट वहां आ जाता है। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल जैसे और भी ठंडा और खतरनाक हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। सम्राट अपने गुरुजी को देखते ही लगभग पागलों की तरह हंसते हुए बोला, गुरुजी, गुरुजी देखो ना, अब तो अरमान सिंघानिया की जिंदगी का आखिरी पल चल रहा है, तो कम से कम अब तो इसके सामने मुझे बता दो कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। मैंने उसकी बीवी को अगवा करके इसे इतना मजबूर कर दिया कि इसने अपने ही हाथों से अपनी बीवी की जान ले ली। अब तो सर्वश्रेष्ठ मैं हुआ ना गुरुजी, बोलो ना प्लीज गुरुजी, बोलो ना। सम्राट ने राजवीर की बातें सुनकर बस एक पल के लिए उसे गहराई से देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान उभरी, पर फिर वो धीमे लेकिन सिहरन पैदा करने वाले स्वर में बोला, श्रेष्ठता किसी की जान लेने से नहीं मिलती सम्राट, श्रेष्ठ वो होता है जो दूसरों की आत्मा तक तोड़ दे। और आज तुमने सिर्फ एक खेल खेला है, असली खेल अभी बाकी है। उसकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वहीं दूसरी ओर अरमान पूरी तरह से टूटा हुआ घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं, जैसे उनमें अब कोई भावना ही बाकी ना हो। हाथ कांप रहे थे, सांसें बिखर रही थीं और होंठों पर बस एक ही नाम बार बार टूट कर आ रहा था, आस्था। उसका पूरा अस्तित्व जैसे उसी एक पल में खत्म हो चुका था। तभी टाइगर अब खुद को और नहीं रोक पाया। गुस्से से उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और पूरी ताकत से राजवीर के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। तुम लोग इंसान नहीं, दरिंदे हो। इसके बाद टाइगर सम्राट पर टूट पड़ा और उसे भी मारना शुरू कर दिया। मुक्कों की बरसात होने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सम्राट और राजवीर दोनों ही हंस रहे थे। जितना टाइगर उन्हें मार रहा था, उतनी ही उनकी हंसी और तेज होती जा रही थी। राजवीर खून से लथपथ होते हुए भी पागलों की तरह हंसते हुए बोला, मारो और मारो, लेकिन याद रखना हमारा मकसद तो पूरा हो चुका है। सम्राट ने भी हंसते हुए अपनी गर्दन सीधी की और बोला, बस एक बार अरमान सिंघानिया अपनी बीवी के गम में खुद को खत्म कर ले, उसके बाद तुम लोग हमें आराम से मार देना या हम खुद अपनी जान ले लेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। दोनों की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें अपनी मौत का कोई डर ही ना हो। लेकिन तभी अरमान की उंगलियां हल्की सी हिली, उसकी बंद मुट्ठी धीरे धीरे कसने लगी और उसकी सूनी आंखों में दर्द के पीछे कहीं एक खतरनाक आग जलने लगी। नानी माँ अरमान की गोद से आस्था को छीनने का बेताब प्रयास करने लगी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे दर्द से भरी आवाज में बार बार कह रही थी,
तुमने मेरी बेटी को क्या कर दिया? तुमने वादा किया था कि मेरी आस्था को मुझे सही सलामत वापस लाओगे।
उनकी हर बात जैसे अरमान के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही ना हो। वहीं अविनाश, आस्था का भाई, पूरी तरह से जड़ हो चुका था। उसकी आंखें आस्था के चेहरे पर टिकी थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी, जैसे एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांसें तो चल रही हों, पर जीने की वजह खत्म हो चुकी हो। ध्रुव फूट फूट कर रो रहा था, उसके आंसू जमीन पर गिरते हुए जैसे उस दर्द की गवाही दे रहे थे जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। आकाश और सुमित अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश बेकार हो रही थी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उनके हाथ गुस्से में कसते जा रहे थे। फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि सम्राट और राजवीर के पास जाकर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकें, उन्हें पीट सकें, उन्हें खत्म कर सकें। वहां मौजूद हर शख्स टूट चुका था, बिखर चुका था। राधिका, रौनक, वंशिका और साथ ही एंजल, सभी लड़कियां एक कोने में बैठी थीं। उनकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी आत्मा ही निकाल ली हो। आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई हरकत नहीं, बस खालीपन। ऐसा लग रहा था जैसे आस्था के साथ साथ उनकी जिंदगी का सहारा भी खत्म हो गया हो, जैसे अब जीने की कोई वजह ही ना बची हो। लेकिन उसी दर्द, उसी मातम के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग था, संजना। उसके चेहरे पर दुख था, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो या शायद कोई रास्ता तलाश रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब थे, असामान्य। वो धीरे धीरे आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थी, कौन खड़ा है, कौन कमजोर है, किस पर ध्यान नहीं है। और फिर उसके होठों पर बहुत हल्की, लगभग अदृश्य सी मुस्कान उभरी, जैसे इस तबाही के बीच वो अपने लिए एक रास्ता देख चुकी हो। फिलहाल तभी राजवीर तुरंत ही अरमान के पास घुटनों के बल बैठ गया। अरमान ने आस्था को कसकर अपने सीने से लगा रखा था, इतना कसकर कि जैसे कोई उसे उससे छीन ही ना सके। एक पल के लिए भी उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की थी, जैसे उसकी सांसें भी अब आस्था के साथ ही बंध चुकी हों। राजवीर ने उसे देखकर गर्दन तिरछी की। उसकी आंखों में वही सनक, वही पागलपन साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बेहद जहरीली आवाज में बोला, क्या हुआ अरमान, किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारी दुनिया तो खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अब फटाफट से अपने आप को खत्म करो, मारो खुद को। वो और झुककर अरमान के बिल्कुल करीब आ गया। तुम मेरे चेले हो और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें इस हालत में जीने का कोई हक नहीं है। खत्म करो खुद को, अभी इसी वक्त इस कहानी का अंत कर दो। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे भी उसके बाद हमें भी अपना कुछ काम देखना है, मुझे तो अपनी बीवी के पास भी जाना है, मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी ये बातें हवा को और जहरीला बना रही थीं। ये सुनते ही अरमान ने धीरे धीरे अपनी नज़र उठाई। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, आंसू सूख चुके थे, लेकिन उनमें अब एक ऐसा दर्द था जो खामोश नहीं था, खतरनाक हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे बस राजवीर की तरफ देखा, एक ऐसा नज़र जिसमें टूटन भी थी और उसी टूटन के अंदर कहीं गहराई में जलती हुई आग भी। तभी सम्राट भी आकर राजवीर के पास बैठ गया। टाइगर ने दोनों को बुरी तरह पीटा था, उनके चेहरे पर चोटों के निशान थे, खून भी बह रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी मुस्कान जरा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि अब तो वो और ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी सम्राट ने धीरे से ताली बजाई, ठक ठक, और बेहद शांत लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में बोला, वाह, यही तो देखना था हमें, एक इंसान का इस हद तक टूटना कि वो खुद अपनी मौत की भीख मांगने लगे। राजवीर हंस पड़ा, गुरुजी बस अब ये एक कदम और खेल खत्म। सम्राट ने अरमान के और करीब झुकते हुए फुसफुसाया, चलो अरमान, हमें इंतजार मत करवाओ, अपनी कहानी का आखिरी पन्ना खुद ही लिख दो। पूरा माहौल जैसे उसे एक पल में थम गया था, सबकी सांसें अटक गई थीं, और उसी सन्नाटे के बीच अरमान की उंगलियां धीरे धीरे आस्था के शरीर से हटने लगीं, जैसे वो कोई फैसला लेने वाला हो। लेकिन अगले ही क्षण उसकी मुट्ठी अचानक कस गई और उसने आस्था को पहले से भी ज्यादा मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसके होंठ हल्के से खुले और बहुत धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज निकली, मैं नहीं मरूंगा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक आग थी, मैं जीऊंगा तुम दोनों को, तुम्हारे हर दर्द का हिसाब देने के लिए। ये सुनते ही पहली बार राजवीर और सम्राट की मुस्कान एक पल के लिए हल्की सी डगमगाई। माँ ही नानी माँ ने जैसे ही राजवीर की ओर देखा, उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में ऐसी आग थी कि वहां मौजूद हर कोई सहर गया। सत्यानाश हो तेरा, तूने ये क्या कर दिया मेरे हंसते खेलते परिवार के साथ, मेरी आस्था को मार दिया तूने। सुन ले, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी, कान्हा जी तुझे कभी खुश नहीं रहने देंगे, और खबरदार, अगर तूने मेरी पोती के बारे में कुछ सोचने की भी कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये कहते हुए नानी माँ पूरी ताकत से राजवीर पर झपट पड़ी। क्या आस्था की मौत के बाद अरमान खुद को भी खत्म कर लेगा? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, सुनते रहेंगे तेरे इश्क में।